हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के रविवार या कार्यक्रम के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कीर्तन के साथ में। कृपया करके व्यवस्थित हो जाएं जितनी जल्दी हो सके, ताकि भगवान के प्रवचन को हम शुरू कर सकें। जो लोग जहां पर हैं प्लीज बैठ जाएं, खड़े ना रहें, प्लीज बैठ जाएं, सभी लोगों को आसानी रहेगी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय
राधा माधव कुंज बिहारी।
बलदेव सुभद्रा महारानी की, पंचतत्व श्री गौर निताय की, पतित पावन श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, निताय निताय गौर प्रेमानंद। जो लोग स्टैंडिंग पोजीशन में कृपया करके बैठ जाएं। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, बता सकते हैं कौन, क्या है आज का शीर्षक टॉपिक? आप में से कितने लोग हैं जिनको एसएमएस प्राप्त होता है, मैसेज? तो मैसेज में तो बताया गया था टॉपिक, बताइए क्या टॉपिक है आज का। हाँ जी, सारी बुराई हमारे अंदर नहीं होती? नहीं, गलत टॉपिक है। और बताए कोई? हाँ, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर है। शत्रु कौन है ये पता करना पड़ेगा, आपके अंदर है आपके अंदर, मालूम है? नहीं प्रभु जी, मालूम होता तो लेक्चर सुनने के वहां से। तो आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर है, ये चीज हमारे को कहां से पता चलती है? भगवत गीता से। कृपया कर जो लोग शोर मचा रहे हैं, शोर ना मचाएं, बाकी लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होगी। भगवान का दर्शन हाथ जोड़कर मुंह बंद करके कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे कौन है? हाँ, डाउट है, मन है कि क्या है पता नहीं है। तो भगवत गीता बताती है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है जो कि हमारे अंदर है। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 39 श्लोक के अंदर बताया गया है, तो आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं। आवृतम ज्ञानम तेना ज्ञानिनो नित वैरिणा काम रूपेण कौन्तुए दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। तो इसका अनुवाद है, इस प्रकार ज्ञान में जीव आत्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु, कौन सा शत्रु? काम। अभी कौन बोल रहे थे? मन। अब पता चल गया यहाँ पर, इसलिए गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है, वरना मालूम ही नहीं चलता शत्रु कौन है। किसी और को गेट पर रोक दिया और हम सोच रहे दोस्त है, वो दोस्त अंदर है, वो पता चला बाद में शत्रु है ना। जिसको दुश्मन समझते थे वो दोस्त था, उसको बाहर रोक दिया, जो शत्रु था वो घर में घुस गया। इसी के कारण हमारे जीवन में दिक्कतें हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं, इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य इसका श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी भी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकल्पों का केंद्र बिंदु मैथुन है, काम सुख। अतः इस जगत को मैथुनी आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, उसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वो मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीव आत्मा के बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीव आत्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो क्या पता चला कौन है शत्रु? हाँ, कौन है? दो तीन लोगों को पता चला, खाली सबको पता नहीं चला कौन है शत्रु। हाँ, तो आप बोलेंगे काम करना छोड़ दें, ऑफिस जाना छोड़ दें, वो वाले काम की बात हो रही है? कौन से काम की बात हो रही है? हाँ जी, श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, की जय। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान का विनम्र मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाभयं ददाते सर्वकान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सात्विजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णां चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिताश्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन कृष्ण वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वंशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम। तो इस काम को हम समझेंगे कि काम किस प्रकार से, कौन से काम की यहाँ पर चर्चा हो रही है। क्या ये वो काम है जो कि हम ऑफिस जाते हैं और लोग कहते हैं प्रभु जी बहुत काम पड़ा है, वो काम की बात तो नहीं है? अगर वो काम की बात हो तो फिर हम कहेंगे प्रभु जी आज बहुत काम है, आज मैं बहुत काम ही हूँ। तो ये वो वाला काम और इस काम का भेद है। इस काम को हमें समझना पड़ेगा कि ये काम की चर्चा यहाँ पर जो हो रही है वो कौन सा काम है। काम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला काम जो कि स्त्री और पुरुष की आसक्ति और उसके प्रति आकर्षण और उसका संग प्राप्त करने की अभिलाषा है ना। आज देखा जाए तो व्यक्ति जितनी भी नौकरी कर रहा है, जितना भी पैसा कमा रहा है, उसके पीछे सिर्फ एकमात्र आकर्षण है क्या? अपनी पत्नी, अपने परिवार को संतुष्ट करना है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक वो काम है जो कि स्त्री को पुरुष का आकर्षण और पुरुष को स्त्री का आकर्षण, और दूसरा जो काम है वो है हमारी इच्छाएं अभिलाषाएं कामनाएं, वो काम भी है ना। हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। पहले हमारे पास जिस जमाने में साइकिलें होती थी तो जो व्यक्ति साइकिल पे होता था वो व्यक्ति रईस, पैसे वाला व्यक्ति माना जाता था। पर उसके बाद थोड़ा समय बदला, बजाज, मेरा बजाज, एक आ गया बजाज स्कूटर आ गया, जिसके पास बजाज स्कूटर वो व्यक्ति रईस व्यक्ति। फिर आ गया हीरो होंडा, आपकी हीरो होंडा, मेरी होंडा, हीरो होंडा, वो होंडा हीरो होंडा जिस व्यक्ति के पास है वो व्यक्ति पैसे वाला है। फिर थोड़ा समय बदला, फिर एक क्या आ गया, कार, मारुति कार, मारुति कार आ गई। और फिर धीरे धीरे समय बदल रहा है, लेकिन काम को तुष्ट करना कितना मुश्किल है। आज अभिलाषा क्या है, क्या होना चाहिए? ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, ये क्या है? ये काम का प्रत्यक्ष दर्शन है। काम देखना चाहते हैं ना, प्रत्यक्ष कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ये काम है। जिस व्यक्ति को अगर जरूरत नहीं है, है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं वो महीने भर गाड़ी चलाते भी नहीं है, फॉर्च्यूनर घर पे कवर करके खड़ी कर रखी है ना, बोले पेट्रोल खर्च होगा। अरे फॉर्च्यूनर खरीद ली, पेट्रोल का पैसा नहीं। मोबाइल ले रखा है वो वाला, कौन सा, सैमसंग टच स्क्रीन, हाँ कौन सा, हाँ एंड्रॉइड फोन, एंड विच इज कॉस्टिंग, जो कि 25,000-30,000 रुपए का है। प्रभु जी आपका मिस कॉल आया था, हाँ प्रभु जी वो बैलेंस खत्म हो गया है। अरे बैलेंस का पैसा नहीं है आपके पास और आप खरीद रहे हैं टच स्क्रीन फोन, क्या जरूरत है? ये काम का प्रत्यक्ष दर्शन है ना। तो भगवत गीता में अनेक श्लोकों में इसकी चर्चा हुई है। कैसे समझ सकते हैं काम को, यहां पर बताया गया है। एक तो आपने अभी सुना श्लोक तीसरे अध्याय का, और एक और श्लोक है तीसरे अध्याय में, जिसमें अरे भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, काम काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महा अश्नो महा पापम विद्य एनि वेरिणाम, है ना। ये क्या है, काम एषा क्रोध एषा, जो ये काम है ये क्या है, महा अश्नो मतलब सर्वभक्षी, हमारे जीवन को खाने वाला नरभक्षी, महा अश्नो महा पापम, इससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण मतलब व्यक्ति के अंदर जीवन में अपने को प्रूव करने की अभिलाषा। भक्त भी बन जाएगा तो प्रूव करना चाहेगा आई एम द बेस्ट, ये जो है ना आई एम द बेस्ट का टाइटल, ये जीवन से जाता नहीं है। कहीं पर भी आप देख लें, रंच मात्र भी अंश मात्र भी अगर ये है मन में, ये भावना है कि मैं सबसे उत्कृष्ट हूं बेस्ट हूं, तो समझ लिए कि काम ने अभी आपका पीछा नहीं छोड़ा है ना। एक काम तो एक है कि पुरुष स्त्री के पीछे आकर्षण, और एक काम ये है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की दौड़। आज लोग क्यों दौड़े जा रहे हैं, क्यों इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, क्यों पैसे वाले बनना चाह रहे हैं, क्या उनकी रोटी कॉस्टली हो गई है? नहीं, वो अपने को प्रूफ करना चाहते हैं समाज के बीच कि आई एम द बेस्ट। पड़ोसी के पास फॉर्च्यूनर है और उसके पास i10 है, बेचारा लोन लेगा लेकिन फॉर्च्यूनर लेके आएगा, किसके लिए ला रहा है वो? उस व्यक्ति के लिए जिसको वो पसंद भी नहीं करता, दिखाने के लिए कि भाई तू मेरे घर के पार्किंग में कैसे खड़ा कर दिया, अभी मैं खड़ा करूंगा अपनी फॉर्च्यूनर। तो वो व्यक्ति जो है ये उसके पास फॉर्च्यूनर पड़ोसी के पास में है, तो वो व्यक्ति भी अपने पास फॉर्च्यूनर ले आया। आप बताइए समझदारी है, लोन के ऊपर लेना और उसके बाद तनख्वाह है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की तनख्वाह उस प्रॉफिट में से उसको टेंशन रहती है कि मैं पैसे कैसे चुकाऊंगा, है कि नहीं है? हाँ क्या है, दिखावा बताते हैं सबसे बड़ा रोग आजकल, पता क्या है, मलेरिया नहीं है, प्लेग नहीं है, एड्स भी नहीं रहा, कैंसर भी खत्म हो गया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है जीवन का। अभी लोग पड़ोसी क्या कहेंगे, इसके लिए मैं अपने काम का प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप में लोन लेकर कर सकता हूं, है ना। सबसे सुंदर स्त्री से मेरे विवाह होना चाहिए, दौड़ लगी है लड़की का सिलेक्शन करने में, ये नहीं कि वो भक्त हो या फिर स्त्री को भी, ये वो भक्त पुरुष भी भक्त हो, क्या दौड़ लगी है, सबसे सुंदर व्यक्ति से मेरी शादी होनी चाहिए, शादी सबसे बड़े हॉल में, बढ़िया डिपार्टमेंट, बढ़िया एकदम उसमें होनी चाहिए। तो ये काम का प्रत्यक्ष दर्शन है। और भगवद गीता के अंदर एक श्लोक आता है दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक, उसमें क्या बोलते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधात् उपजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसा, जैसे ही आपने विषय का ध्यान किया है ना, उससे आपकी आसक्ति जुड़ जाती है, और वो आसक्ति जुड़ने के कारण क्या होता है, आपके मन में कामना उत्पन्न होती है कि ये तो मुझे पूरा करना है, और नहीं पूरा होने पर क्या होता है, क्रोध आता है। तो आज देखते हैं ना आप लोग क्रोध में हैं, तो किस कारण से क्रोध में, हम भी क्रोध में, लोग तो हैं ही, हम भी हैं, क्यों है, क्योंकि हमारे मन में जो अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही है हमारे विषय में। मतलब मान लीजिए हमने सोच लिया कि हमारे पास भी एक बड़ी कार होनी चाहिए थी, क्या द्वारका में टू रूम फ्लैट में रह रहे हैं। हमारे गांव में हमारा घर है वो इतना बड़ा पेंट हाउस है, द्वारका में होता तो उसकी कीमत कितनी होती। आधे लोग यही मल्टीप्लाई करते थे माइंड में बैठे, ना धन तुम्हारे काम आ रहा है ना किसी के काम आ रहा है, बस बैठे बैठे मल्टीप्लाई। घर को बेचेंगे भी नहीं, पता है 10 लाख का लिया था, अभी पता कीमत 2 करोड़ से कम नहीं है। अरे वो 2 करोड़ की रोटी थोड़ी खानी है, ईंटें उखाड़ के रोटी खाओगे। मन में बस ये काम है जो सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैंने अपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, ये काम का प्रत्यक्ष दर्शन है। और दूसरा भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी बताया गया है, क्या कामस्ते हत ज्ञानम प्रपधन्ते अन्य देवता ताम तम नियम स्थाय प्रकृते निताय स्वाहा। इसका अर्थ क्या है, कामस्ते हत ज्ञानम प्रपधन्ते अन्य देवता। जिस व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती ना वो फिर भक्ति नहीं करता है, क्या करते हैं, शिव जी इच्छा पूरी कर दो, दुर्गा जी मैया मेरी इच्छा पूरी कर दो, माता लोग बड़ी खुश होती हैं, जय माता दी। इच्छाओं की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए दौड़ लगी हुई है, सबसे जल्दी जो देवता पूरी कर दे वही देवता मेरा प्रिय देवता है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछ लिया ऐसे ही, बोला एक किसी भक्त के पास गया, पुजारी के पास, मंदिर है ना सनातन धर्म मंदिर जहां पे सभी देवी देवताओं का मार्केट है, तो वहां पर जाकर पूछते हैं कि ऐसे कौन से देवता हैं जिनके पास कम भक्त आते हो ताकि हमारी अप्रोच थोड़ा नजदीक से हो जाए। तो उन्होंने बोला कि देखिए शिवजी के पास भी बहुत भीड़ है, सावन का महीना लगा हुआ है, कृष्ण भगवान के भक्त तो है ही, द्वारका में देखो 2000 लोग आते हैं, माला जपते हैं, सब बहुत अच्छे भक्त हैं, तो क्या करें, ऐसा कोई भक्त ऐसा कोई देवता बताएं जो कि जल्दी हमारी इच्छाएं पूरी कर दे। तो उन्होंने कहा एक देवता है ब्रह्मा जी, वो सेक्लूडेड मतलब अकेले रहते हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है, ऐसे एक भक्त हैं ब्रह्मा जी। आप ब्रह्मा जी के पास जाएं, 4 मुंह हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, और वो ब्रह्मा जी को कोई पूजा ही नहीं कर रहा, वो ब्रह्मा जिसने सृष्टि बनाई है ना उसका कोई नाम निशान नहीं है, और लोग एक मंदिर बनवाते हैं तो उसमें पत्थरों में अपने नाम पे नाम लिखवा देते हैं, एक मंदिर है घर के ऊपर नेम प्लेट में 4 जगह अपना नाम, बैंक की कॉपियों में नाम ही नाम, और उसने सृष्टि की रचना करी, ऐसे देवता को कोई पूछता ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को पूछने के लिए वो व्यक्ति बोला ये तो अच्छा बता दिया आपने पुजारी, अब ब्रह्मा जी की मैं पूजा करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पढ़िया। तो उसने 3 महीने लगातार जप किया, ओम ब्रह्माय नमः ओम ब्रह्माय नमः, 3 महीने लगातार एक पैर पर खड़े होकर जप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोलो बच्चा प्रसन्न हूं किसी ने तो मुझे याद किया, पुष्कर में एक मंदिर बनाकर भूल गए, कोई पूछता ही नहीं मेरे को, तुमने मुझे याद किया, बोलो क्या चाहते हो। बोले देखिए ब्रह्मा जी काम के लिए आजकल सब लोग याद करते हैं, काम है ना टॉपिक, काम काम के लिए सब लोग याद करते हैं, मेरी इच्छाएं पूर्ति कर दो तो मैं फिर आपका भजन करूंगा। तो उन्होंने कहा क्या, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा, तुमने 3 महीने भजन किया है तो 3 वर दूंगा, 3 वर आप मुझसे मांग लो। तो उसने कहा ठीक है ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है 3 वर। तो पहला वर कि मेरी एक सुंदर स्त्री से शादी करा दो, काम सुंदर यही अभिलाषा है, सुंदर स्त्री से शादी करा दो, कह रहे ठीक है तथास्तु। दूसरा एक बढ़िया सा द्वारका में मकान दिलवा दो, कह रहे ठीक है तथास्तु। तीसरा जब भी बुलाऊं तब फिर प्रकट हो जाना। तो भगवान वो ब्रह्मा जी बोले अरे ये तो टेंशन ले लिया ऐसे भक्त को बता के, बोले ठीक है भैया बोला है तो आना पड़ेगा। अब वो बेचारा रहने लगा आराम से अच्छा खासा पत्नी के साथ, बच्चे पैदा होने वाले हैं हॉस्पिटल का बिल पे करना है, तो बोला ओम ब्रह्माय नमः, ब्रह्मा जी हाँ बोलो बेटा हम प्रकट हो गए, बोला था वादा किया है, क्या चाहिए। बोले देखिए हॉस्पिटल का बिल आया, बच्चे पैदा हुए हैं उनका बिल देना है, घर पे जाएंगे तो घर के अंदर ले जाने लाने के लिए गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी चाहिए, कह रहे तथास्तु दोनों चीज हो गए। तीसरा बोले तीसरा जब बुलाओ तो फिर आ जाना। ब्रह्मा जी बोले मर गया हम तो किल, अभी मार डाला इन्होंने मुझे, अभी मैं बार बार आता रहूंगा तो फिर मैं अपना कब सृष्टि का कार्य कब संभालूंगा, मुझे तो इतने ब्रह्मांडों की सृष्टि की रचना करनी होती है, फंस गया बेचारे। उसके बाद अब तो इतना बुरा हाल कर दिया कि घर का जो पेंट उतर जाता है, तो दिवाली पे वाइफ बोली देखो पेंट उतर गया पेंट करवा लो, कह रहे क्या जरूरत है पेंटर को बुलाने की, ब्रह्मा जी है ना, ओम ब्रह्माय नमः, ओ ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी बोले बोलो बेटा क्या चीज, कह रहे पेंट ठीक करवा दो, कह रहे अच्छा दूसरा दिवाली के ऊपर कुछ खरीदारी करनी होती है, लोगों का दिवाला निकल जाता है, वो दिवाली के गिफ्ट दे दो लोगों को देने होते हैं। तीसरा बोले जब बुलाऊं तब आ जाना। ओहो तो बड़े परेशान हो गए ब्रह्मा जी, बोले क्या करा जाए भाई। तो कहां जाए ब्रह्मा जी, ईश्वरम परम कृष्णम सचिदानंदम विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम बजामी। किसका भजन करते हैं? गोविंद का, कृष्ण का। तो सीधे ब्रह्मा जी अपने भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं हे प्रभु एक भक्त है उसको बिना सोचे समझे वर दे दिया है ना। कामस्तेते हता ज्ञानम प्रपदन्ते अन्य देवता। वो काम में फंसा हुआ था, उसने मुझसे वर मांगा मैंने दे दिया सोच के कि बेचारा भक्त है, लेकिन उसने तो मेरे को फांसी का फंदा लटका दिया है, मारने पर उतर गया है मेरे को। तो भगवान बोले इसीलिए तो बोला है बिना कंसल्ट किए कुछ काम मत किया करो, फॉलो अथॉरिटी, अथॉरिटी को फॉलो किया करो। तो उनको बोला गया कह रहे ठीक है अभी तो छुड़वाओ, कह रहे ठीक है इस बार जब वो तुम्हें बुलाए तो मुझे बता देना। तो जब वो बुलाता है तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हे कृष्णा मेरी रक्षा करो, और जोर से क्या बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। जब इस प्रकार से बोलते हैं तो फिर ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान सरस्वती माता को बोलते हैं कि जाकर इस भक्त की जिह्वा पे बैठ जाओ, और जिह्वा पे बैठकर क्या करो इसका उच्चारण में फर्क करा दो। तो फिर उसने प्रार्थना करी, जब ब्रह्मा जी को बुलाया तो ब्रह्मा जी बोले बोलो क्या तीन वर चाहिए जल्दी बोलो। तो उन्होंने बोला कि पहला वर कि मेरे को जप में मन लगने लगे, दूसरा मैं भगवत गीता और भक्तों का संग प्राप्त कर सकूं, और तीसरा इस जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और तो इस प्रकार का कार्य कब होता है? कामस्तेते हता ज्ञानम प्रपदन्ते अन्य देवता। काम के वशीकरण लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। अगर आप कृष्ण के पास जाएंगे तो आपको इस प्रकार का परेशानी नहीं होगी। जैसे बाजार का आदमी होता है ना, आप छोटे बच्चे को बोलिए कि ये ब्लेड खरीद के ले आओ। क्या ले आओ? ब्लेड। 10 रुपए देके भेजो, दुकानदार लेगा 10 रुपए ब्लेड दे देगा। लेकिन वही भगवान, वो बच्चा जब अपने मम्मी पापा से ब्लेड मांगेगा तो देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जानते हैं कि इसके लिए कष्टदायक है। ऐसे ही कृष्ण क्योंकि सबके पिता हैं, है ना, सबके पिता हैं, अहम बीज पद पिता, सबका बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, तो क्या करते हैं ब्लेड जाने अनजाने में नहीं देते हैं। देवी देवता क्या करते हैं? जाने अनजाने में ब्लेड पकड़ा देते हैं, क्योंकि उनको तो क्या चढ़ावा आया वर दे दो। तो बेचारे वो भी गलत नहीं है, उनकी सेवा ऐसी दी गई है, अज्ञानता में वो भी ऐसा कर देते हैं, उनकी सर्विस ऐसी है। लेकिन कृष्ण क्या करते हैं? सोच समझकर वर प्रदान करते हैं, है ना। इस तरह से वर प्रदान नहीं करना चाहिए। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं उनकी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं और उनको कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होता है। इसलिए बताते हैं भगवद्गीता में आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु, चार प्रकार के भक्त भगवान की शरण में जाते हैं। और काम के ऊपर हम ये समझ सकते हैं कि इस काम को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बताया गया है कि अगर आप चाहें कि अपनी इच्छाओं को रोक दें कि अब से मैं टेलीविजन नहीं देखूंगा, अब से मैं टेलीविजन नहीं देखूंगा, आप जानते हैं इस काम का सबसे बड़ा शत्रु, काम तो हमारे शरीर के अंदर शत्रु है और बाहर शत्रु कौन है? टेलीविजन। एक बार किसी से पूछा कि ये जो डिश एंटीना लगाते हैं ना, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? लोग प्रवचन में प्रश्न पूछते हैं, तो किसी भक्त ने बताया इस डिश एंटीना को संस्कृत में बोलते हैं कली ध्वज, कलयुग का ध्वज, कलयुग का झंडा। जिसके घर पे खड़ा है उसके घर में अंडा ही अंडा है ना, कली ध्वज। ये कलयुग का ध्वज है जिसका डायरेक्ट रिले सारा दिन आ रहा है टेलीविजन पे। तो जो जो टेलीविजन में 24 घंटे घर में चला के रखते हैं उनके घर में कलयुग का पूर्ण रूपेण वास रखा है ना। तो अभी जो ये टेलीविजन है वो कंट्रोल करना मुश्किल है। तो कोई भक्त यहां आ जाए इस कॉन में लेक्चर सुनने के लिए, बोले काम के वशीभूत नहीं होऊंगा, अब मैं टेलीविजन नहीं देखूंगा, एक दिन नहीं देखूंगा, दो दिन नहीं देखूंगा, तीन दिन नहीं देखूंगा, चार दिन नहीं देखूंगा, आज बहुत मन कर रहा है रिमोट तक हाथ जाएगा, चला दूं नहीं, फिर चला दूं नहीं, संडे को बोलेगा आज छुट्टी आज तो चला ही देता हूं, फिर वो चलाएगा, फिर सारा जो भी रिकॉर्डेड भी होता है ना डिश एंटीना में रिकॉर्डेड प्ले रीप्ले सारा देख डालेगा। तो ये होता है काम को रोकने से। तो इसलिए रूपा जी बता रहे हैं कि हमको काम को रोकना नहीं है, क्या करना है? काम को डाइवर्ट करना है, dovetail into Krishna consciousness,
इसको बदल देना है।
जैसे पेड़ होता है ना, उसको यहां से उखाड़ा, यहां गाड़ दिया। उस आसक्ति जो भौतिक जगत में है उसको उखाड़ के कृष्ण के चरणों में लगा देना है, भक्तों के चरणों में लगा देना है, भगवत गीता के चरणों में लगा देना है, तो फिर क्या होगा, हमारा जीवन कंट्रोल हो जाएगा। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विषय विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिनाम रसो वर्जन रसोऽपि यस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। क्या है इसका अर्थ, कि हम कितना भी कंट्रोल करना चाहें, जब तक परम दृष्टवा सुपीरियर रस की प्राप्ति नहीं होगी, सर्वोष्ट रस, तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। तो अगर हम टीवी नहीं देखना चाहते हैं तो हम क्या करें, टीवी तो देखना ही है, आंखें बनाई है, आदत पड़ी हुई है, तो रामायण देखें, महाभारत देख लें, तो उससे क्या होगा, धीरे 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 हमारा रुझान टीवी के प्रति कम होगा। और साथ के साथ क्या करते रहे, तो बताया जाता है कि लोग तपस्या करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि जो इस्कॉन में भी तो तपस्या बताई जाती है, सुबह 4 बजे उठना तपस्या नहीं है, जप करना 16 मालाओं का जप करना 2 घंटे, ये भी तपस्या है, और कीर्तन में नृत्य करना ये भी तपस्या है, वृंदावन धामों की परिक्रमा करना ये भी तपस्या है, तो तप करें तो ये भी तो तप है, तप में क्या डिफरेंस है, तो बताया गया है कि 2 प्रकार के तप होते हैं, पता सकता है कोई कौन से होते हैं 2 प्रकार के तप? हाँ, एक होता है तप और एक होता है दिव्य तप। क्या होता है? दिव्य तप। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धे यस्माद् ब्रह्म सुखाय तु अनंतम्। इसका अर्थ है, तपो दिव्यं पुत्र कायेन, कि जो भी हम तपस्या करते हैं अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करी जाए तो उसका फल कैसा है, ब्रह्म सुखाय तू अनंतम, ब्रह्म सुखाय, डिवाइन हैप्पीनेस, और कैसा, तू अनंतम, नेवर एंडिंग, कभी इसका अंत नहीं होगा। लेकिन जो तप साइंटिस्ट करते हैं, देखो उनके बाल कैसे हो जाते हैं, हमारे भी हो जाते हैं, दूसरे टाइप से उनके दूसरे टाइप से, तो ये दिव्य तप है, और वो तब कैसा होता है, बाल ऐसे हो जाते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट के, और वो साइंस लगे रहते लगे फूट जाता है, रॉन्ग फेल, ऐसे पता नहीं कितने प्रयास करते हैं, 30 साल निकाल देते हैं, फिर बाद में डिस्कवरी कर लेते हैं, जो भगवान ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है उसको डिस्कवर कर लेते हैं, और क्या बोलते हैं, हम कौन है, साइंटिस्ट, तो वो भी तपस्या है, पर वो तपस्या है, और ये जो हम करते हैं जब, ये क्या है, दिव्य तपस्या, दिव्य तप, तो ये दिव्य तप हमें करना चाहिए। देखिए कि जो तपस्या करते हैं उन लोगों की बहुत सुंदर उदाहरण विष्णु पुराण और भागवत पुराण में आता है। भागवत पुराण के अंदर 9वें स्कंद के अंदर एक कथा आती है कि एक ऋषि थे, उनका नाम था सौभरी ऋषि। क्या नाम था? सौभरी ऋषि। सौभरी ऋषि तपस्या करने के लिए मथुरा जाते हैं, मथुरा धाम, और मथुरा धाम में यमुना नदी का एक कुंड होता है, और उस कुंड में बैठ के वो तपस्या करते हैं, और वहां तपस्या करने के लिए मतलब इतने बड़े तपस्वी हैं कि जल के नीचे सांस भी ले रहे हैं और अपना ध्यान भी लगा रहे हैं, और साथ में वहां पर वो जो मछलियां होती है ना कुंड के अंदर, वो सोचते यही मेरा परिवार है। अब देखो, परिवार छोड़कर कहां आए, पानी के नीचे, और पानी के नीचे आके क्या सोच रहे हैं, ये मछलियां मेरा परिवार है, और एक दिन क्या देखते हैं कि 2 मछलियां आपस में संग कर रहे हैं, एक पुरुष मछली और एक स्त्री मछली आपस में संग कर रहे हैं अंडे उत्पन्न करने के लिए, और उसको देख के उनको लगता है ये मैंने हजारों साल की तपस्या करके टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे भी क्या करना चाहिए था, जीवन का आनंद लेना चाहिए था, और छोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो जब बाहर आते हैं तो पूरा शरीर गला हुआ है, पानी में रहे हैं, लंबे लंबे बाल हैं, नाखून भी। जो राजा होते हैं वो राजा का नाम है मानधाता, उन राजा के पास आते हैं और राजा को आकर कहते हैं कि हे राजा, मैंने इतने सालों तपस्या करी है, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में मैं आपकी पुत्री से शादी करूं। आप राजा हैं, राजा का क्या कर्तव्य है, राज्य की सेवा करना, तो मैं आपकी प्रजा हूं, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करूं, तो आप मुझे शादी कराइए। तो राजा देख के कहता है ये कंडीशन में तो तुम्हें महल में नहीं घुसने देना चाहिए था, पर क्योंकि मैं करुणा में राजा हूं मैंने तुम्हें आने दिया। अब तुम बात करते हो शादी की, तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, राजा चालाकी से जवाब देते हैं, ट्रेडिशन है कि देखो शादी तुम कर सकते हो पर वो इच्छा है पुत्री की, तो मेरी 50 कन्या है, कितनी 50 50 कन्या चाहती हैं कि अगर वो तुम्हें पसंद करेंगी तो फिर मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। वो जानते थे कि मेरी पुत्रियों को तुम चाहिए सबसे सुंदर वर, कहते ना सुवर, सुवर नहीं सुवर, सुकन्या और सुवर, लोग सोचते हैं सुवर, मेरी कन्या को सुवर चाहिए, सुवर नहीं चाहिए सुवर चाहिए। तो सुवर की तलाश में वो जाते हैं, कहते हैं सुवर चाहिए मेरी कन्या को, तो ये आपके जैसा कहां पसंद आएगा, तो वो समझ जाते हैं, ऋषि थे तपस्या थे, तो कहते हैं अपना शरीर को पूरा दिव्य तक से वो बदल देते हैं और एकदम हैंडसम डैशिंग यंग जेंटलमैन बन जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं तो रानी उनकी पुत्रियां आती हैं एक एक करके सारी देखती हैं और सारी अपना दिल उसको दे देती हैं, कहती इन्हीं से हमें विवाह करना है। अब 50 की 50 लड़कियों में लड़ाई हो जाती है, मैंने पहले देखा, अरे तूने देखा, मैंने तो हाँ मैंने भर दिया था, तो 50ों में लड़ाई हो जाती है। तो फिर राजा क्या करते हैं कि ठीक है आप 50 के 50 इनसे विवाह कर लो, तो 50 स्त्रियों के साथ में उनका विवाह होता है। और फिर वो इतने तपस्वी थे कि हर एक के लिए अलग अलग उन्होंने घर बनवाए, महल, और महल बनाकर अलग अलग उनको सुख प्रदान किए। तो एक बार मानधाता जो उनके पिता थे 50 पुत्रियों के, उन्होंने सोचा कि मैं जाकर तो देखूं कि मेरी पुत्रियां कष्ट में तो नहीं है। तो उन्होंने वहां जाकर क्या देखा कि पहली पुत्री के महल में घुसे तो देखा वहां पर स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ है पूरा, सोने की एकदम टेबल, सोने का बेड, सोने वाला बेड और सोने वाला बेड दोनों था, सोने वाला बेड और सोने वाला बेड, तो सोना चांदी सब कुछ महल में, आभूषण रत्न सब लगे हुए हैं। और देखा सौभरी ऋषि भी बैठे हुए हैं, तो कहा कि इस पुत्री की किस्मत तो अच्छी है कि इसको सब कुछ मिला और साथ में पति का संग भी मिला। फिर दूसरी पुत्री के कमरे में गए, महल में गए, तो वहां पर भी यही कुछ, 50 के 50 के पास सौभरी ऋषि मौजूद थे। तो जिस प्रकार से भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, सौभरी ऋषि ने तपस्या से अपना एक्सपेंशन करना सीख लिया था, तो उन्होंने 50 रूपों में, भगवान तो अनंत रूपों में एक्सपेंशन करते हैं, लेकिन उन्होंने 50 रूपों में अपना एक्सपेंशन किया था। और इतना सुख भोगने के बाद उनको 150 पुत्रों की प्राप्ति हुई, 150 पुत्र उनके पास थे। और 150 पुत्रों के होने के बाद एक दिन उनके मन में क्या आया कि मैंने अपनी तपस्या कहां बीच में छोड़ दी थी, पानी के बीच में, बस मुझे धाम प्राप्त होने वाला था लेकिन मैंने अपनी तपस्या को तोड़ दिया और कहां आ गया, इस भोग विलास के अंदर, विषय जीवन के अंदर, और क्या कर रहा हूं, 50 स्त्रियों को भोगा, उसके बाद 150 उत्पन्न के पुत्र, सारा ऑप्युलेंस, रत्न सोना सब कुछ उनके पास, लेकिन इसके बाद भी क्या नहीं था, संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि ये संतुष्टि काम को भोगने से नहीं आती है, त्यागने से आती है। आप देखिए जो आग है एक काम का रूप है, इसमें जब घी डालेंगे तो कम होगी बढ़ेगी, तो जितनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहेंगे वो बढ़ती रहेगी। आप में से कोई है जिसने इच्छाएं की हो और वो समझता हो कि आप पूरी हो गई है, सारी पूरी हो जाएंगी तो लगेगा बच्चों को सेटल कर दूं, बच्चे सेटल हो गए तो लगेगा पोतों को सेटल कर दूं, एंड टाइम आ जाएगा, यमदूत कहेगा सर टाइम ओवर, फिर भी कहेगा बस टू मिनट। तो मतलब अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होती जीवन में व्यक्ति की, तो इसलिए जो समय मिले उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और फिर सौभरी ऋषि के जीवन में विराग उत्पन्न हुआ और सब कुछ एक दिन में छोड़कर वापस तपस्या करने चले गए। तो आप लोगों तो भाग्यशाली हो कि आपको डायरेक्ट क्या मिल गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके पीछे कारण क्या है, आप सोचेंगे कि इतना बड़ा तपस्वी जो था वो कैसे इतना मन उसका बदल गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया था। जानते हैं आप, भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापाभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः, तुम्हें सारे पापों से मैं मुक्त कर सकता हूं लेकिन अपराधों से नहीं कर। तो हमारे जीवन में भक्ति क्यों नहीं प्रगति होती, क्योंकि हम पाप तो हमारे भगवान के नाम जपने से कट जाते हैं, लेकिन जो हम अपराध करते हैं, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, इनकी इतनी संख्या हो गई है, पहाड़ बना लिया हमने अपने जीवन में कि हमारी भक्ति की प्रगति नहीं हो पा रही। तो ऐसे एक बार भगवान विष्णु का जो गरुण है वाहन,
वो आया मछलियां खाने के लिए उसी कुंड में जहां पर सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा ये तो मेरे परिवार की मछलियां हैं, उनको क्या मतलब था भगवान के भक्त के बीच में बोलने का, है ना। उन्होंने सोचा ये तो मेरा अंपायर है, ये सारे मेरे पुत्र पुत्रियां हैं आपस में इधर घूम रहे हैं। उन्होंने बोला तुम इस कुंड से मछलियां नहीं खा सकते, गरुण को मना कर दिया। गरुण ने कहा तुमने ऐसे कैसे मना कर दिया, मैं विष्णु भगवान का वाहन हूं। कह रहे जो कुछ भी हो जाओ अपने भगवान से कह दो है कि मेरे कुंड में तुम नहीं खा सकते, जहां से खाना है खाओ। तो गरुण को बहुत गुस्सा आया। गरुण ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें श्राप देता हूं, क्या कि तुम क्या होगा अपने पद से उच्युत हो जाओगे, च्युत हो जाओगे, गिर जाओगे अपने पद से। इसी के कारण उनका मन बदला। तो देखिए कि हम कितना भी जप करें कितना भी तप करें लेकिन हमको एक चीज ख्याल रखनी चाहिए कि भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध ना हो। ये विषय जीवन से छूटने के लिए हमें भक्तों का संग पाना है, भक्तों की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, उनके प्रति अपराध करने से बचना है। तो इसीलिए कहते हैं देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे, है ना। अपने मन को उस मार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, है ना। अपने जीवन में हमें कृष्ण गोविंद गोपाल गाना है। श्री श्री रुक्मणी द्वारका देश भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, नंदन गिरिराज की जय, पदित पावन शिल प्रभुपाद गौड़ निताय की जय। तो इसी प्रकार से एक और कथा आती है भागवतम और महाभारत के अंदर, उसका वर्णन है ययाति महाराज की कथा है। आप में से कुछ भक्त जानते होंगे ययाति एक महाराज हैं जिनकी पिता का नाम है नहुष और उनकी पत्नी का नाम है विरजा, और ये पांडवों के पूर्वज रहे हैं। पांडवों के जो पांडव थे ना महाभारत के युद्ध में, उन पांच पांडवों के पूर्वज थे राजा ययाति, और नहुष वंश में आ रहे हैं। इनके जो राजा ययाति थे इनकी दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी और सो तो नहीं रहे, देवयानी और हाँ ठीक है। तो देवयानी और शर्मिष्ठा जो थी, इसमें से जो देवयानी थी वो शुक्राचार्य की बेटी थी जो कि असुरों के राजगुरु हैं, गुरु हैं, उनकी पुत्री थी देवयानी। और जो वहां के राजा थे विश्वपर्वा, उनकी पुत्री थी शर्मिष्ठा, है ना। तो ये भी राजा थे, शादी तो राजा की क्षत्रिय की क्षत्रिय में होनी चाहिए थी, लेकिन क्यों एक बार राजा जा रहे थे उन्होंने कुएं में से एक स्त्री को बचाया, क्यों है ना, ये काम के कारण उनको स्त्री से प्रेम हो गया। उन्होंने जब बचाया तो बचाने के लिए फिल्म में होता है हीरोइन को बचाया साथ में फिर फॉल इन लव। तो फिर राजा ययाति उस देवयानी के साथ प्रेम में बंध गए और उन्होंने सोचा कि मैं इससे विवाह करूंगा, लेकिन साथ में क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो उनको क्षत्रिय वंश में शादी करनी चाहिए थी। तो जो ये थे विश्वपर्वा, इनके गुरु भी थे शुक्राचार्य, तो उन्होंने सोचा कि गुरु कन्या का जहां विवाह हो रहा है मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूं। तो शुक्राचार्य से पूछा गया तो शुक्राचार्य ने कहा कि नहीं अलाउड नहीं है, जहां पर मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है वहां तुम्हारी पुत्री क्या करेगी। तो राजा ने कहा कि देखो मेरी पुत्री तो गुरु की सेवा के लिए है और गुरु की पुत्री की सेवा के लिए है, तो इसको दासी बनाकर शादी कर देते हैं, क्योंकि राजा ययाति जैसा सुवर कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्होंने फिर उनकी देवयानी से शादी कर दी। देवयानी के साथ जब शादी की तो एक नोट बनाया कि शर्मिष्ठा कभी भी ययाति का संग नहीं पा सकती है, वो सिर्फ दासी बनकर सेवा करेगी, और उनका महल अशोक वाटिका बाहर बना देगा अशोक वृक्ष के नीचे, वहीं तुम रहो वहीं सेवा करो, जब जरूरत होगी बुला लेंगे लेकिन राजा तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन राजा क्योंकि क्षत्रिय थे तो उनको क्षत्रिय पुत्री के प्रति भी आकर्षण था, ये काम यहां पर काम का प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है कि उनको देवयानी से भी प्रेम था और उससे शर्मिष्ठा से भी प्रेम हो गया। शर्मिष्ठा ने बोला कि अगर देवयानी को पता चल गया तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि तुम दोनों के महल काफी दूरी पे हैं। तो देवयानी से उनके दो पुत्र थे यदु और तरुस्वा, और शर्मिष्ठा से उनके तीन पुत्र थे ध्रुव अनु और पुरु। तो जो ये थे तीन पुत्र, ये पांच पुत्र हो गए इनके टोटल मिला के। तो एक बार शर्मिष्ठा के जो पुत्र थे उनके बारे में देवयानी को पता चल गया और उन्होंने अपने गुरु अपने पिता शुक्राचार्य को बोला कि देखो जब मेरी शादी हुई तो इन्होंने वादा किया था मैं किसी परिस्त्री का संग नहीं करूंगा, लेकिन काम के वशीभूत होकर इन्होंने शर्मिष्ठा के साथ भी विवाह कर लिया और उससे तीन पुत्र उत्पन्न कर दिए, मेरे से दो उससे तीन। तो ये इतने कामी व्यक्ति हैं, इनको आप श्राप दो, तो उन्होंने श्राप दिया शुक्राचार्य ने कि तुम इसी वक्त बुजुर्ग बूढ़े बन जाओ, तुम्हारे जीवन में विषय भोगने की इच्छा इतनी है, तुम अभी बुजुर्ग हो जाओ बूढ़े हो जाओ कि तुम्हारा काम समाप्त हो जाए। लेकिन काम समाप्त होता है क्या? किसी बूढ़े का भी काम समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? जब तक वो कृष्ण भावना भवित नहीं है। अगर कोई कृष्ण भावना भवित है तो 5 साल का बच्चा प्रहलाद वो भी भक्त बन जाता है, उसके जीवन में भी काम समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भक्ति नहीं करेगा, जो कृष्ण भावना भवित नहीं है, उस व्यक्ति का अंतिम समय भी आ जाए तो क्या होगा? काम समाप्त नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार एक राजा था, अपनी कथाओं के प्रवचन में प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक राजा था, उसने अपने मंत्री से पूछा कि आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है जो बुढ़ापे तक मृत्यु शैया तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो उस मंत्री ने कहा कि देखिए, जीवन में काम जो है, इच्छाएं, स्त्री भोग, ये ऐसी चीजें हैं, स्त्री का पुरुष के प्रति संबंध, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, हमारे जीवन की अभिलाषाएं, तृष्णाएं, ये कभी खत्म नहीं होती अंतिम समय तक। तो उन्होंने कहा, तुम प्रूव कर सकते हो क्या? तुम इसे साबित कर सकते हो? तो मंत्री बोला, जी महाराज, आप अपनी पुत्री को लेकर मेरे साथ चलिए। हमारे राज्य के एक कार्यकर्ता जिनकी उम्र है 95 साल, 95 ईयर्स, उनकी आज मृत्यु होने वाली है, उनका अंतिम समय चल रहा है, हम उनके पास चलेंगे। तब हम उनके कमरे में घुसे तो आप सिर्फ उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना और अपनी पुत्री को साथ में लेकर चलो जो 16 वर्ष की है। तो 16 वर्ष की पुत्री को लेकर राजा और मंत्री तीनों उस कार्यकर्ता जो मरने वाला था उसके पास पहुंचे। जब पहुंचे तो क्या देखा कि वो मर रहा था, लेकिन जैसे ही कमरे में घुसे उन्होंने कहा दरबारियों ने कि राजा साहब पधार रहे हैं। जैसे तो उसने सबसे पहले किसको देखा? उस पुत्री को देखा। तो फिर राजा ने ध्यान से देखा कि मैं राजा होकर इसके घर पर आया हूं, एक कार्यकर्ता छोटा सा मेरा सैनिक, और जब मैं इसके पास आया तो इसने मुझे ना देखकर मेरी पुत्री को देखा। तो यह बात साबित करती है कि वो 95 इयर्स का व्यक्ति कृष्ण भावना भवित न होने के कारण कहां था आसक्त था? काम में आसक्त था, जिसने 16 साल की स्त्री के प्रति आकर्षण रहा मृत्यु शैया के ऊपर भी। तो प्रभुपाद जी कई बार अपने प्रवचनों में बताते हैं कि अगर हम अपने जीवन में कृष्ण कॉन्शियस नहीं होंगे अभी आज, तो काम हमारा पीछा मृत्यु के समय तक भी नहीं छोड़ेगा। हम सोचेंगे ना बच जाएंगे, नहीं बचेंगे वो काम हमको। और फिर कहते हैं अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त व कलेवरम यम यम वापि स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम। अंत काल में जैसा स्मरण करेंगे, पुरुष स्त्री का करेगा तो अगले जन्म में स्त्री बनेगा, स्त्री पुरुष का करेगी तो अगले जन्म में पुरुष बनेंगे। तो आप सोच सकते हैं अगर हम पुरुष हैं तो पिछले जन्म में क्या रहे होंगे। और आगे क्या बनना चाहते हैं आपके ऊपर। तो फिर इसी प्रकार से जब वो राजा ययाति को श्राप दिया शुक्राचार्य ने कि तुम अभी क्या बन जाओ, एक बुजुर्ग बूढ़े बन जाओ, तो बेचारे शर्म से ऐसे हो गए, माफी मांगने लगे, कह रहे मैं आपका दामाद हूं, मैंने आपकी पुत्रियों को पूरा जीवन उनकी सेवा करी है, कृपया कर मुझे माफ कर दीजिए। तो कहते ठीक है, मैं तुम्हें एक वर भी देता हूं कि तुम किसी जवान व्यक्ति से अपनी आयु बदल सकते हो और फिर जीवन का भोग कर सकते। तो सोचिए क्या किया होगा महाराज ययाति। महाराज ययाति ने अपने बेटों से, जो जवान बेटे थे 16 साल 20 साल के, उनके आगे हाथ जोड़ा कि मुझको भोग करने की इतनी इच्छा है कि तुम अपने पिता की अगर सेवा करना चाहते हो तो अपनी उम्र मुझे दे दो। तो उन्होंने 5 पुत्रों से रिक्वेस्ट करी, लेकिन 4 ने मना कर दिया। उसमें से एक राजा पुरु थे, पुरु वंश, पुरु राजा। राजा पुरु ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, बोले पिताजी मैं आपकी सेवा करूंगा, और उन्होंने अपनी जवानी, अपनी यंग एज अपने पिता को दान दे दी और खुद बुजुर्ग बन गए, जवानी में बुजुर्ग बनना एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद बताते हैं महाराज ययाति ने 1000 वर्षों तक भोग किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक दिन उनको भोग करते करते रियलाइजेशन हुआ, है ना, आत्म साक्षात्कार कि मैंने इतना सब कुछ किया, 2 स्त्रियों से शादी करी, इतने पुत्रों की उत्पत्ति करी, 1000 सालों तक मैंने भोग किया, लेकिन ये समाप्त क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से खुजली होती है वो खुजाने से बढ़ती है, कम नहीं होती है। डॉक्टर के पास जाओ ना इचिंग की प्रॉब्लम लेके, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, वो क्या कहता है, डोंट स्क्रैच, जितना खुजाओगे उतना बढ़ता जाएगा, अग्नि में जितना घी डालोगे उतना बढ़ता जाएगा। तो मैंने अपने जीवन में भोग को बढ़ाया है सोच सोच कर कि बस एक बार और वो कभी एक खत्म नहीं होता। तो इसके कारण क्या हुआ, आज मेरा पतन हो गया है। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसी पर अपने पूरे परिवार को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में जाकर क्या करते हैं, तो देखिए समझने वाली बात है। कबीर, संत कबीर जो है वो बहुत सुंदर एक दोहे में कहते हैं, माया मरी मन मरा मरमर गए शरीर, माया मरी मन मरा मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा, ये तृष्णा आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कबीर जी कह रहे हैं कि देखिए जो तृष्णा है, भोग की अभिलाषा है, ये मरने तक भी समाप्त, शरीर मर जाएगा लेकिन अभिलाषा समाप्त नहीं होगी। वो बोलते ना फिल्म के आगे लिखा होता है एंड में, टू बी कंटिन्यूड, अगले जीवन में फिर। इसीलिए जो छोटे से छोटे बच्चे भी हैं ना, वो देखिए वो आकर्षित हैं स्त्री के प्रति, ये सिखाया नहीं जाता, ये ऑटोमेटिकली है, पूर्व जन्म का आकर्षण हमारे जीवन में बना हुआ है। और देखिए तपो दिव्यम, अभी हमने बात करी किसकी, तप की बात, और दिव्य तप हरिदास ठाकुर, श्री हरिदास ठाकुर 1450 में कहां जन्म लेते हैं, बंगाल में। हमारे संप्रदाय के महान नाम आचार्य हैं, हरि नाम का आचार्य बताया गया उनको, ब्रह्मा जी का साक्षात अवतार हैं, और उन्होंने यवन वंश में मुसलमान परिवार में जन्म लिया। और मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद अद्वैत आचार्य के संग में आकर उन्होंने क्या जपना शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इतना वो जप करते थे कि उनसे मुस्लिम राजा हुसैन शाह और वहां के लोकल काजी इतने अगेंस्ट थे कि तू क्या है, भगोड़ा है, मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद तुमने क्या किया, एक ऐसे हिंदू वंश के कृष्ण भगवान की पूजा करता है, तुमने हमारे कुल का नाश कर दिया है, मुसलमानों को नीचा दिखाया है, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, मारेंगे। 22 बाजारों में, अलग अलग मार्केट में, जैसे 6 सेक्टर 12 सेक्टर 13 सेक्टर सब में मारा जाए भक्तों को, ऐसे मारा गया उनको, कोड़ों से मारा गया। आप लोगों को मारा जाए तो क्या होगा, बोले प्रभु जी मारने का बोलोगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। वो मारा गया, उनको पीठ पर लाल लाल निशान पड़ गए, लेकिन उसके बाद भी वो क्या बोलते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना जप करने के बाद उनको एक बार भी दर्द का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, योगक्षेमम वहामेहम, आपके पास जो नहीं है उसको मैं प्रदान करता हूँ, जो आपके पास है उसकी मैं सुरक्षा करता हूँ, आपकी मैं सुरक्षा करता हूँ। भगवान कहते हैं, LIC नहीं देती है गारंटी, लेकिन भगवान देते हैं। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर का सारा दर्द निकाल दिया उनके शरीर से, रंच मात्र भी दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण के प्रति विश्वास है, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण है। और एक दिन में उन्होंने 192 माला 192 माला करने का प्रण लिया, 300,000 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे 22 घंटे, और इसीलिए उनको उपाधि दी गई नाम आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। आचार्य हैं और नाम हरि नाम के आचार्य हैं, है ना। तो देखिए ऐसे नाम आचार्य के ऊपर भी राजा ने क्या किया, माया रूपी एक स्त्री एक वैश्या उनके पास भेज दी, और वो जप कर रहे थे अपनी कुटिया में, और आकर वो वैश्या क्या बोली, काम का टेस्ट ले रहा है ना भगवान, काम का टेस्ट ले रहे हैं, कितना काम आप में, कितनी इच्छाएं, स्त्री भोग कितनी इच्छाएं आपके जीवन में बाकी है। वो जब वो स्त्री आई तो उसने बोला कि हरिदास मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो वो बोले कि माता आप थोड़ी देर इंतजार करें, अभी मेरा जप बाकी है, आप लोग भी टेस्ट करिएगा, जप में इंटरेस्टेड रहते हैं या फिर गप में इंटरेस्टेड रहते हैं। ज्यादातर देखा जाए हम जप कर रहे होंगे ना, साथ के साथ दूसरों को प्रचार भी कर रहे होते हैं। देखिए जीवन में ध्यानपूर्वक जप करना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो जप करें तो गप ना करें, गप करें तो फिर जप ना करें, है ना। तो हरिदास ठाकुर ध्यानपूर्वक जप कर रहे थे, उन्होंने माता से बोला कि मुझे जप करने दीजिए, मेरे जप में डिस्टर्ब मत करिए। वो जप करते रहे करते रहे करते रहे, और सुबह हो गई, पूरी रात निकल गई, और फिर वो देवी जो थी वो बैठी 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 जप को सुनती रही। ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस, दिव्य ध्वनि का जब कानों में पड़ा तो क्या हुआ, शुद्धिकरण, पूरे जीवन का मल निकलने लगा। दूसरे दिन फिर तैयार होकर आई, अभी 50% काम उसमें बाकी था, आई तो फिर आज भी रात में आई, रात का समय, और फिर आकर अकेला उसने आकर हरिदास का टेस्ट लिया। कि हरिदास मैं तुमसे कुछ कहना चाहते हूँ, तुमसे मिलना चाहते हूँ। हरिदास बोले, माता आज भी मेरा जप बाकी है, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं दिन में 300,000 भगवान के नाम लूंगा, बस जप समाप्त होते ही मैं आपका संग करूंगा। और फिर उन्होंने क्या किया, जप करते रहे करते रहे करते रहे। ऐसे जब 3 दिन हुआ तो तीसरे दिन वो स्त्री के पूरे जीवन का मैल धुल गया और वो वैश्या, वो स्त्री माया का रूपी आकर हरिदास के चरणों में गिर गई और क्या बोली कि मुझको भी आप भक्ति प्रदान करिए, मुझे दीक्षा दीजिए। और फिर उन्होंने उस स्त्री को भी दीक्षा दी और फिर उनको हरे कृष्ण महामंत्र जपने की शिक्षा भी दी। तो देखिए कि जीवन में परिवर्तन किया तो काम पर विजय किसने प्राप्त करी, जो कृष्ण की शरण में है। जिसने कृष्ण की शरण नहीं ली उस व्यक्ति के जीवन में काम को जीत पाना अत्यंत मुश्किल है। विषय विनी वर्तन्ते निरहारस्त देई नाम रसो वर्जन रसो अपियस्य परम दृष्टा निवर्तते। जिसने हरे कृष्ण महामंत्र जैसा परम रस प्राप्त किया है अपने जीवन में वही व्यक्ति काम को जीत पाएगा, अन्यथा अधिक व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल है। आप देखिए अन्यथा क्या होता है, हमारे जीवन में तरह तरह की अभिलाषाएं रहती हैं। कोई सोचे कि सफेद धोती कुर्ता पहनने से शायद मेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा, तो बदलाव, या फिर वृंदावन घूमूंगा रोज रोज, हर संडे जाऊंगा वहां पर तो शायद बदलाव आ जाएगा। तो कहते हैं वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ कॉन्शियसनेस, ये चेतना है। इसलिए प्रभुपाद 70 साल की उम्र में हिंदुस्तान से विदेश जा रहे हैं क्योंकि उनकी चेतना में वृंदावन है, जगह में वृंदावन नहीं है। तो मंदिर टेम्पल जो है वो ईंटों से नहीं बनता है, चेतना से बनता है। आपके हृदय में अगर कृष्ण विराजमान है तो जहां भी रहेंगे वहां आपका मंदिर मौजूद रहेगा, वहां पर कृष्ण चेतना मौजूद रहेगी आपकी, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मंदिर आना छोड़ दें, क्योंकि वो चेतना प्राप्त करने के लिए हमें भक्तों का संग पाना पड़ेगा पहले, है ना। तो इसी कारण एक बार एक ब्राह्मण थे और एक वैश्या थी। वैश्या ब्राह्मण के घर के सामने रहती थी, बिल्कुल सामने, जैसे मंदिर ऐसे सामने। तो उसके मन में हमेशा आता था कि मैंने अपने जीवन को भोग विलास में लगाया और अपने शरीर का दुरुपयोग किया, सही उपयोग नहीं किया। और क्या करती हूँ मैं, सारा दिन इंतजार करती हूँ कि कभी कोई आएगा तो शायद मेरे को कुछ धन मिलेगा, मेरी रोटी चलेगी। लेकिन ये व्यक्ति जो सामने ब्राह्मण है कितना भाग्यशाली है कि इसने अपने पूर्व जन्म में कितने पुण्य कर्म किए कि ये सुबह से शाम क्या करता है, ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करता है। काश कि कृष्ण मुझको भी एक ऐसा जन्म दें जिसमें मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं। और सारा दिन मन ही मन क्या बोलती रहती थी, गोपाल 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो मन से चिंतन में वो जप करती थी। और जो ब्राह्मण था वो जब आरती कर रहा होता था तो आरती करते करते, क्योंकि वो शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं था, उसके मन में काम अभी बाकी था, 50% भक्त बना था, तो क्या हुआ उसका मन आकर्षित किया उस स्त्री ने, कहा कि कभी ये जब खाली रहेगी तो मैं इसका संग प्राप्त करूंगा और किसी दिन बोलूंगा कि आज मुझको भी अपना संग दो। तो इसी चिंतन में वो आरती करता रहता था, गाता तो था मुंह से आरती हरे कृष्णा, लेकिन वो साथ के साथ चिंतन करता था उसका। और फिर क्या हुआ, एक दिन भूकंप आया, गांव के सभी लोग मारे गए, साथ में ये ब्राह्मण भी मारा गया और वो वैश्य भी मारी गई। और दोनों की आत्माएं जब ऊपर की तरफ जाने लगी, बताते हैं कि जब हमारा शरीर अंत होता है तो 792,000 मील की दूरी सिर्फ 2 सेकंडों में हमारी आत्मा पूरी करती है, 792,000 miles। अभी जो एक साइंटिस्ट ने विमान बनाया वो सिर्फ 18,000 मील प्रति घंटा चलते हैं, 18,000 miles per hour, लेकिन 792,000 मील per 2 seconds ये जो चलती है ये सिर्फ आत्मा चलती है, इतनी फास्ट है। और इसको जब ले जाया जाता है तो ये आत्मा जा रही थी, जाकर ब्राह्मण और वैश्य की आत्मा दोनों एक जगह पर डिसीजन जजमेंट होने लगा। तो बोला गया कि वैश्य की आत्मा को कहां भेजा जाए, वैकुंठ धाम, और ब्राह्मण की आत्मा को कहां भेजा जाए, नरक। क्यों ऐसा क्यों, हाँ हाँ, क्योंकि उसने भगवान का चिंतन किया और इसने वैश्य का चिंतन किया। तो देखिए कि काम कितना खतरनाक है कि पूरा जीवन सफेद धोती कुर्ता पहनने के बाद भी व्यक्ति का अगर काम समाप्त नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए जीवन में उसी व्यक्ति का समाप्त है, किसका, हरिदास ठाकुर का। क्यों, क्योंकि उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र की शरण ली, देवी देवताओं की या मंदिर की शरण नहीं ली, भगवान के महामंत्र की शरण ली, तो वो माया देवी वैश्य के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए, उससे आकर्षित नहीं हो पाए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी काम इच्छाएं अभिलाषाएं आज समाप्त हो तो हमको किसकी शरण लेनी चाहिए,
हरे कृष्णा।
अभी बताते हैं कि नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे, क्राइम का जो सर्वे है यूएस का 2005, उसमें बताया गया है हर 34 मिनट में पूरे वर्ल्ड में 34 मिनट्स में एक रेप होता है, और हर 43 मिनट्स में एक औरत किडनैप होती है ना, और हर जो है एक मिनट में, दो मिनट में तीन बच्चों का गर्भपात किया जाता है, अबॉर्शन किया जाता है। तो सोचिए ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, अबॉर्शन हो रहा है तीन बच्चों का दो मिनट में, इतनी सारी 43 औरतों का 43 मिनट में एक औरत को किडनैप किया जा रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? काम के कारण है ना, काम के कारण। और ये काम का सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारे घर में? टेलीविजन, जिसके डिश एंटीना को क्या कहते हैं? काली ध्वज। ये ध्वज जब तक लहराता रहेगा हमारी इच्छाएं, हर आदमी को लगता है मैं भी कौन हूं, हीरो हूं, और मुझे भी कौन मिलनी चाहिए? हीरोइन। जब हीरोइन नहीं मिलती तो फिर क्या, रोड पे सारी हीरोइन नजर आती हैं, और फिर ये क्या होता है, इस प्रकार के गलत काम होते हैं। हर स्त्री को भी लगता है मेरी शादी किससे होनी चाहिए? हीरो से होनी चाहिए। ये भक्त कहां से मिल गया मेरे को? तो देखिए, भक्त मिला तो वो भाग्यशाली है, उसने भगवान की शरण ली है। तो पहले जमाने में क्या होता था, ये नहीं पूछा जाता था पैकेज कितना है, आपके लड़का कितना कमाता है, पूछा जाता था कितना जप करता है। अभी तो पूछा जाता है कितना पैकेज है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और उसी के अनुसार सोचा जाता है अच्छा होगा। बाद में पता चलता है डाइवोर्स, क्योंकि उसका ऑलरेडी 5 स्त्रियों के साथ या स्त्री का 5 पुरुषों के साथ संबंध निकल आता है। तो देखिए, इसका कारण यही है कि फिल्में, टेलीविजन हमको गलत शिक्षाएं दे रहा है। सही शिक्षा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वैदिक एजुकेशन जो इस मंदिर में दी जा रही है इस्कॉन के द्वारा, पूरे विश्व में आज इसकी चर्चा है कि हम क्या देते हैं, वैल्यू एजुकेशन। स्त्रियों को, पुरुषों को, सभी लोगों को गलत शिक्षाओं से निकालकर सही शिक्षाएं दी जा रही है। इवन आज छोटे बच्चों की क्लासों में से मॉरल साइंस सब्जेक्ट ही हटा दिया गया है। बोलते कोई मॉरल नहीं है, इमोरल बन जाओ तभी जीवन में प्राप्ति होगी, सक्सेस पाना चाहते हो तो धोखा देना सीखो, ऐसे सिखाया जाता है। धोखा दोगे, चीटर्स आर द बिगेस्ट सक्सेसर्स, ऐसे नहीं है। अगर आप सत्य का सहारा लेंगे तो थोड़ा कष्ट तो है, लेकिन जीवन के अंत में आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है और आनंद प्राप्त होने वाला है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार एक बहुत सुंदर कथा बता रहे थे, उसमें कहते हैं कि एक शराबी था। क्या था? शराबी से उन्होंने बोला कि तुम भजन क्यों नहीं करते हो, शराबी तुम भजन क्यों नहीं करते हो? तो शराबी बोला कि क्यों, भजन करने से क्या होगा और शराब पीने से क्या होगा? बोले भजन करोगे तो धाम जाओगे और शराब पियोगे तो नरक में जाओगे। तो बोला अच्छा, नरक जाऊंगा? सुरेन बाबू, क्योंकि बंगाल की कथा है ना, तो बोले सुरेन बाबू भी तो शराब पीते हैं, कह रहे तो वो भी नरक जाएंगे। और वरुण बाबू, वो भी पीते हैं, कह रहे वो भी नरक जाएंगे। कह रहे अच्छा, तो अरुण बाबू, बोले वो भी नरक जाएंगे। कह रहे और जो वो हमारे यहाँ एक एक बीमारी वैष्णवी है, वो वैश्या है, वो कहाँ जाएगी? बीमारी वैश्या। कह रहे वो तो गलत काम करती है, कह रहे वो भी नरक जाएगी। कह रहे और जो जुए खेलते हैं, कह रहे वो भी नरक जाएंगे। तो बोला कौन कौन नरक जाता है ये बताओ? कह रहे जो मांसाहार का सेवन करता है, नशा पान करता है, जुआ खेलता है, परिस्त्री संग करता है, सब नरक जाते हैं। कह रहे मजा आ गया, जो मैं चीज यहां प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं नरक में मिल जाएगी, तो कौन भजन करेगा? तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं ये कथा कि देखिए, जो लोग अभिलाषा है जिनकी भोग करने की, वो नरक में भी भोगने जा रहे हैं, इसी के कारण उनके साथ में क्या होता है, पनिशमेंट मिलता है। आज जितने भी लोग रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं अभिलाषाओं की पूर्ति के कारण, एट लास्ट क्या रहा उनके साथ, जेल में पिताड़ित होते हैं, जेल में हंटर खाते हैं, चक्की पीसते हैं, पूरे तरह का काम करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, फिर भी मन में क्या है, प्रवृत्ति बची रह जाती है, इच्छाएं। बाहर निकलूंगा तो इस बार नए तरीके से जीवन को, स्टाइल से जीऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, और इसी चक्कर में एक दिन अंत समय आ जाता है, लेकिन वो करने की अभिलाषा समाप्त नहीं होती है। और एक और छोटी सी चीज बताऊंगा, उसके बाद प्रोजी समाप्त करूंगा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में बताया गया है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, नरक के तीन द्वार हैं, है ना, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनम, जो आत्मा का नाश कर देते हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोधस लोभस्ता तस्मात एतत् त्रयम् त्रजेत, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, काम क्रोध लोभ, हम ये तीन नहीं छोड़ पा रहे। कहे प्रभु जी शत्रु ने, ये तो सबसे बड़े मित्र हैं हमारे, काम क्रोध लोभ, ये नरक के डायरेक्ट द्वार हैं। कोई जैसे हाईवे है ना, नोएडा एक्सप्रेस हाईवे आगरा वाला, वैसा हाईवे है। ये तीन चीजें अपने जीवन में बस धारण करिए और हाईवे स्पीड से नरक की ओर बढ़िए। तो खुला हुआ दरबार है, कोई टेंशन नहीं, नरक जाना बहुत आसान है ना, बस तीन चीजें लानी है जीवन में। तो एक बार प्रभुपाद एक बहुत सुंदर चीज बता रहे थे कि लोग अपनी स्त्रियों के प्रति इतने आसक्त हैं कि वो कुछ और सोचने नहीं चाहते, परिवार के बाहर कुछ निकलने नहीं चाहते। उन्हें बोलो ना प्रभु जी जप करो, कह रहे प्रभु जी हम तो मानते पर पत्नी नहीं आने देती, हम कहते मंदिर जा रहे, कह रहे पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया, मंदिर जाओगे, चलो कहीं बाहर चलते घूम के आते। पत्नी कहती है कि पति आने नहीं देता, पति कहता है पत्नी नहीं आने देता। तो कैसा ये क्या हो रहा है जीवन में। तो ऐसी प्रभुपाद एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार अकबर ने बीरबल से बोला कि चलो हम जाकर अपने मोहल्ले में देखते हैं, द्वारका में, द्वारका के तो नहीं थे जहां पे भी थे आगरा में, कि हम जाकर देखें कि हमारे राज्य में क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां हैं। तो जब बाहर गए तो देखा कि एक औरत अपने पति को बहुत बुरी बुरी तरह से डांट रही है, तुम ऐसे कुछ समझते नहीं हो, कुछ नहीं है, ये नहीं है, खुद से गुस्से में उसने एक लगा भी दिया चटा, लाल रंग का मुंह हो गया। राजा अकबर का गुस्सा, बोला इस स्त्री की इतनी हिम्मत कि अपने पति देवता को मार दिया, और काहे का देवता, असुर है ये तो, थार थार मारने लगे। वो राजा अकबर को बहुत टेंशन हो गई, कह रहे हमारे राज्य में ऐसी स्त्रियां, बताते हैं कि स्त्री को कैसा होना चाहिए, जब वो छोटी हो तो अपने पिता पर आश्रित होना चाहिए, जब वो बड़ी हो तो अपने पति पर आश्रित होना चाहिए, जब बूढ़ी हो तो अपने पुत्र पर आश्रित होना चाहिए। लेकिन जब स्त्री अनाश्रित हो जाती है, इंडिपेंडेंट, कंधे से कंधा, तो दिक्कत पैदा हो जाती है। तो वहां पर ऐसे ही होता है, चटा चटा आवाजें आती है घर से, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, चटा इंडिपेंडेंट, जिस घर से आवाज आए बाहर लिखना चाहिए इंडिपेंडेंट हाउस। तो है ना, वो मारे, तो अकबर को बहुत बुरा लगा। अकबर बोले सारे लोगों को बुलाओ इस राज्य के, कि जो जो अपने यहाँ पर हमारे विवाहित लोग हैं, मैरिड लोग, जैसे हम बुलाते हैं ना कांग्रीगेशन संडे को, हमारे प्रभु जी बुलाते हैं, सारे कांग्रीगेशन जो विवाहित लोग हैं सबको बुलाओ, और सबसे पूछा जाएगा कि वो अपनी स्त्रियों से डरते क्यों हैं। तो सबको बुलाया गया, तो सारे आए, सबसे पूछा गया अकबर ने, आ गए सारे, कह रहे हाँ, उसे बहुत गुस्सा था कि स्त्री से डरते हैं, आ गए, हाँ, कह रहे तो फिर बताओ आप में से कौन कौन है जो कि स्त्री से डरते हैं अपनी, वो जो डरते हैं वो इस सेल से इधर आ जाए। तो सारे के सारे लोग इधर से इधर आ गए, एक आदमी खड़ा रह गया। तो उसने कहा वाह वाह वाह, ये है हमारे राज्य का होनहार पुरुष, समझदार व्यक्ति, वाह बेटा वाह, नाम बताओ। तो उसने अपना नाम बताया, कह रहे आप यहां से यहां क्यों नहीं आए, कह रहे मेरी स्त्री ने बोला था भीड़ से अलग खड़े रहना। तो आप बताइए, इस प्रकार से व्यक्ति काम आ सकता है इतना कि पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष आपस में, मतलब मंदिर और जप छोड़ देते हैं। लोग बोले प्रभु जी नहीं मानते, माता जी नहीं मानते, अरे अगर कोई नहीं मानता भगवान का जप करने के लिए, आप और भी तो काम है, जो शराब पीते हैं उनकी पत्नी मना करती शराब मत पीजिए, लेकिन लोग टाइम निकाल कर पीते हैं ना, तो जो जप करने का नशा है इसको भी टाइम निकाल कर करना चाहिए। जैसे तैसे ये इन प्रकार मन कृष्ण वेश्याय, क्या करना है अपने जीवन का 7 मिनट निकालना है और फिर क्या जपना है,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम।
तो समझे आप लोग, इस तरह से आप लोगों को आसक्ति जो है परिवार से निकालकर कृष्ण के चरणों में डालनी है, है ना। आपने कभी देखा डिब्बा जो होता है, डिब्बा ट्रेन होती है जब ट्रैक पे खड़ी होती है, तो ट्रेन कई कई ट्रेनें चलती नहीं है, बहुत टाइम तक खड़ी रहती है। उन्हें पूछो ये खड़ी क्यों है, तो बोले इसके आगे इंजन नहीं है। तो क्या करना होता है, वो जेट निकालकर इंजन में डालना होता है। तो अपने जीवन का जेट जो कुंडा है उसको वहां से निकालिए एंगल को परिवार से, और कृष्ण और भक्तों के चरणों में डाल दीजिए। जिधर भक्त चलेंगे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे बस। तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, समय पूरा हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न पूछ सकते हैं समाप्त। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम समाप्त करेंगे। ठीक, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, बलदेव सुभद्रा महारानी की, पंच
अनंत गौर निकाय की, अनंत पावन श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैश्व भक्तवृंद की, निकाय निकाय गौर प्रेम अनंत।
बैठ जाइए प्लीज 5 मिनट। अभी अभी तमाशा खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, बैठ जाओ।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इस बार एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा लोग आएंगे जन्माष्टमी।